नमः सिद्धेभ्यः मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानां जैनं जेतु शासनं अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की।
संसार में अनुशासन का कितना महत्व है इसको हम अपने पुराण ग्रंथों से सीखते हैं। चाहे वो पुरानी बात हो चाहे नई बात हो, चाहे वो पुराना युग हो या नया युग हो, कोई भी युग हो, अनुशासन अपनी मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है जिसकी शरण में या जिसके आधार लेने से संसारी प्राणी पतित से पावन बन जाता है और जिसकी शरण के अभाव में यह संसारी प्राणी बहुत कुछ ऊंचाई तक पहुंच करके भी पतन के गर्त में पुनः लुढ़क जाता है, गिर जाता है। जिसकी गवेषणा करने के लिए हम कोई भी सक्षम नहीं, केवल ज्ञानी के द्वारा ही वह ज्ञात हो सकता है कि उतनी ऊंचाई तक पहुंच करके भी जीव का पतन यदि हो सकता है तो कहां पर कौन ढूंढ सकता है। तो आचार्य कहते हैं कि वह केवल सर्वज्ञ का विषय बनता है। भगवान के अलावा हम तुम व्यक्तियों की वह बस की बात नहीं रहती है, उस अनुशासन की बात आपके सामने करना चाह रहा है। महाभारत से सब लोग परिचित हैं क्योंकि भारत में बैठे हैं। आज वर्तमान में नवभारत भी आप पढ़ते हैं, प्रतिदिन आपके सामने आता है। न नवभारत की बात है न महाभारत की बात है, बात तो भारत की, किंतु महाभारत कैसा बनता है और नवभारत कैसा बनता है, भारत किसे कहते हैं, इससे याद होता है। जब महाभारत प्रारंभ हो जाता है, युद्ध के कुछ नियम होते हैं, अनुशासन होता है। युद्ध का अर्थ ऊधम नहीं, युद्ध का अर्थ अनुशासनबद्ध एक विद्या है जिसके माध्यम से जो अनुशासन में नहीं रहता उसके लिए शासन का दर्शन या सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। तो अनुशासनबद्ध होकर के ही यह कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। एक दिन की बात है कि आज अभिमन्यु चक्रव्यूह की रचना करेगा और यह जब घोषणा हो गई तो दोनों तरफ से उस रचना के लिए कुछ समर्थन और कुछ विरोध प्रारंभ होंगे, संघर्ष प्रारंभ हुआ। नियमावली बनी थी और प्रतिदिन की नियमावली बनती ही थी। अभिमन्यु आप जानते हैं अर्जुन का सुपुत्र माना जाता है। वह बेटा बाप से कम नहीं था, बाप से कम नहीं होते हुए भी कुछ कमियां रह नजर में आती हैं, उसका कारण आप लोगों को ज्ञात है। चक्रवी की रचना में वह प्रवेश करता चला जाता है। आज का यह दिन महाभारत के लिए एक शिक्षा प्रद माना जाता है। किस प्रकार धांधला होता है और किस प्रकार घोटाला हुआ करते हैं, यह आज ही नहीं पहले भी हुआ करता था, वह नजर आता है। धर्म से यदि कोई चलता है तो उसमें यश तो निश्चित है, लेकिन अधर्म से चलता है तो सत्य का नाम समाप्त हो जाता है और असत्य एक प्रकार से हावी हो जाता है। युद्ध को इसलिए अपनाया जाता है कि कहीं असत्य हावी न हो जाए जनता के ऊपर और सत्य कहीं चला न जाए, क्योंकि सत्य यदि चला जाता है तो असत्य राज्य कर नहीं सकता, क्योंकि असत्य का राज्य असत्य के ऊपर संभव नहीं और असत्य का राज्य सत्य के ऊपर भी संभव नहीं। सत्य का राज्य असत्य के ऊपर तो संभव हो सकता है। केवल भारत में श्रवण परंपरा ही रही ऐसा नहीं है, गृहस्थ परंपरा भी है। जो गृहस्थ क्रियाकांड के माध्यम से अपने जीवन को एक प्रकार से श्रवण परंपरा की पुष्टि के लिए आगे बढ़ाने के लिए कारण हो जाते हैं, तो जो ही प्रवेश पाता चला जाता है वीर अभिमन्यु, वो अभिमन्यु कहलाता था, लेकिन उसके पीछे वीर और उपाधि लगाई जाती थी। छोटा सा बालक है, आप लोगों के नाती जैसे है, लेकिन क्योंकि क्षत्रियता उसके पास विद्यमान है, वह उस भीड़ को नहीं देखता, वह उन वीरों से डरता नहीं, वह और किसी से मतलब नहीं रखता। चक्रव्यूह की रचना जो है उसके अनुशासन से वह बंद करके चल रहा है और उसको आत्मविश्वास है कि मैं इसमें विजयी होकर के रहूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति अनुशासन प्रेम होता है और जिस लकीर से चलने के लिए कहा गया वह सर्किल लकीर को पकड़ करके चलता है, वह व्यक्ति कभी भी हार नहीं सकता, किंतु लकीर के फकीर नहीं होना चाहिए। कुछ लोग लकीर के जो फकीर हो जाते हैं वह उसके मायने को नहीं समझते। तोता रतंत को या लकीर के फकीर को हो, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। शब्द के साथ यह शब्द लकीर माना जाता है और उसमें जो अर्थ रहता है वह एक प्रकार से मंजिल तक पहुंचाने वाला होता है। शब्दों के द्वारा यदि मंजिल मिल जाती तो जिसके पास कान है मन नहीं है उसके भी मंजिल मिलने चाहिए, लेकिन मिलती नहीं मंजिल। सुनना कानों के द्वारा नहीं होता, सुनने में आता ही है कानों के द्वारा, किंतु मनोयोग के साथ सुनना होता है। मन लगाएंगे तो सुनना सार्थक होता है, कान लगाने से सार्थकता नहीं होती। कानों में तो शब्द आकर के चले जाते हैं, कानों में अर्थ नहीं गूंजते, कानों में शब्द गूंजते हैं, मन में अर्थ आ जाता है जो व्यक्ति उसको ग्रहण कर सकता है। उस शस्त्र विद्या के माध्यम से उसने इतने प्रावीण्य को प्राप्त कर लिया था, इतना आत्मविश्वास उसे था और वह प्रवेश पाता चला जाता है, सब लोग देखते दंग रह जाते हैं। सारे के सारे कौरव दांतों तले उंगली दबाते रह जाते हैं कि ये कैसा वीर अभिमन्यु है, पिता तो पीछे रह गया और यह तो उससे भी आगे बढ़ गया। ये निश्चित है कि इसी के द्वारा हमारा सारा सारा चौपट हो जाएगा, लेकिन अनुशासन पहले बंधा हुआ था, इसका कैसा उल्लंघन हो सकता। उल्लंघन का अर्थ महान पाप माना जाता, कोई कुछ भी नहीं करता, कोई चारा नहीं रहा। कौरवों ने सोचा कि हमारे आज तो फजीती हो जाएगी यदि इसको नहीं मिटाया जाएगा, और कोई रास्ता नहीं है। आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार अभिमन्यु का वध हुआ है। युवा वध नहीं है, वह एक प्रकार से क्षत्रियता के ऊपर एक कलंक है। आज तक बड़े बड़े जीवन में योद्धा और एक आज का छोटा लड़का और उसके सामने उसका यदि वध कर देते हैं तो उसकी शोभा नहीं मानी जाती। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात जब आ जाती है, वह व्यक्ति इधर उधर नहीं देखता कि अपने स्वार्थ के लिए मेरा जो पद है वह कहीं नीचे न आ जाए, इसके लिए वह तैयारी करता है। और सब कौरवों ने अनुशासन को उल्लंघित कर दिया और उसका किस प्रकार से वध हो गया आपके सामने है। लेकिन ये ध्यान रखो, इसमें एक रहस्य की बात और है। वीर अभिमन्यु ने तो अनुशासन का भंग नहीं किया और कौरवों ने उसको रखा ही नहीं, इसके बीच में एक और रहस्य की बात है जो हमें और अतीत की ओर ले जाता है, जो हमारे चित्त वृत्ति के बारे में प्रश्न चिन्ह लगा देता है, जो हम चलते हुए भी किस प्रकार प्रमाद कर जाते हैं इस पर वह प्रश्नार्थक चिन्ह और लगा देता है, संदेह पैदा कर देता है कि हम इतने चल तो गए हैं लेकिन ये क्यों हम गिर गए हैं, इसके बारे में और सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जो प्रमाण के कारण ऐसा हुआ करता है। अनुशासन तो अनुशासन होता है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे श्रमण हो, चाहे वो आज का हो या कल का हो, चाहे वो नया हो या पुराना हो, कोई भी हो, अनुशासन तो अनुशासन होता है। गृहस्थ को इस बारे में भी और सोचना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे गृहस्थ है, उनका एक जीवन नहीं रहता किंतु परिवार का जीवन रहता है, परिवार का जीवन नहीं रहता, अड़ोस पड़ोस के भी उसके ऊपर प्रभाव रहता है। इतना ही नहीं, वह संबंध जुड़ता 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 बहुत दूर तक चला जाता है, जो एक समाज के रूप में एकीकरण को लेकर के पैदा हो जाता है। एक कंकर किसी भी तालाब में किसी बीच में थोड़ा सा कंकर गिर जाता है, पूरा तालाब स्पंदित हो जाता है, यह अपने आप ज्ञात हो जाता है। जब उसमें से छोटी भले ही लहर हो, लेकिन वह लहर उठती है और जहां से उठी है वहां से तट तक जाकर के अपनी वार्निंग दे देती है कि हाँ, बीच में कहीं न कहीं कुछ खलबली हो चुकी है। छोटा सा कंकर है और उस तालाब को उसने स्पंदित कर दिया और तालाब में लहर कितनी बड़ी हो गई। दोनों तट तक वह परिधि खींचती चली गई और एक खसखस के दाने के बराबर भी एक कंकर इतने बड़ा तालाब को भी स्पंदित कर सकता है। इसी प्रकार एक अनुशासन भंग करता तो समाज में उसका रूप भयंकर रूप लेकर के आ सकता है, उसका परिणाम हम जानते हैं। लेकिन अनुशासनहीनता बड़ी खतरनाक वस्तु, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे परसों हो, चाहे पुरानी हो, कोई भी हो, हमारे लिए बाध्य कर देती है। पुराण ग्रंथों को पढ़ने से यही हमें प्रकाश मिलता है। वह रहस्य की क्या बात थी? वह बात थी इसलिए थी, रहस्य की इसलिए बात थी, अभिमन्यु के पिताजी अर्जुन हैं और मां कौन है? सुभद्रा है। जब चक्रव्यूह रचना की विशेषता बताते हुए पत्नी को अर्जुन जी सुना रहे हैं, यह युद्ध में सबसे अमोघ शस्त्र माना जाता है चक्रव्यूह की रचना, और इस रचना के माध्यम से वह रचनाकार इसका जब प्रयोग करता है किसी का उसके ऊपर कुछ नहीं चलता और उसका पूर्ण चलता है और बाध्य होकर के पूरी सेना को उसको सहन करना पड़ता है। किंतु एक तरीका होता है, इसका एक अनुशासन होता है, इसकी एक आर्ट कला होती है, इसका एक अनुभव होता है और इसमें वह सफलता प्राप्त कर लेता है। जिन्नाचार्यों ने नए को नए चक्र की एक उपमा दी है। जैनाचार्यों ने नए को एक नए चक्र की उपमा दी है और नए चक्र की योग रचना जो वक्ता जानता है वही व्यक्ति निश्चित रूप से अनेकांत का क्या मर्म है, सार है और लक्ष्य है इसको वह हासिल कर सकता है, अन्यथा वह स्वयं ही उस चक्रव्यूह में फंस करके मर जाता है, क्योंकि वह फेल हो जाता है। जो फेल होता है वह निश्चित रूप से दूसरे के लिए भी फेल होने के लिए कारण बन जाता है। वह चक्रव्यूह की रचना सुना रहा है और सुभद्रा सुनती चली जा रही है। बार बार में वह पूछ रहा कि इसके उपरांत ऐसा होता, इसके उपरांत ऐसा होता, इसके उपरांत ऐसा होता। आदि तक प्रवेश के बाद सारी सारी सुभद्रा के कान तक उसने पहुंचा दिया, क्योंकि वो खेल नहीं था, कोई कथा नहीं थी, कोई टाइम पास करने का विषय नहीं था, किंतु वह विषय ये था कि अर्जुन कहता है यदि मैं मान लो आज ही समाप्त होऊंगा तो मेरे शास्त्र वह ज्ञान या वह विद्या, किंतु जो गर्भ में संतान है उस संतान के ऊपर ये वाणी का असर हो जाए, बस एकमात्र अर्जुन का लक्ष्य था। और वह बार बार पूछता था कि क्यों सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रही हूँ, बिल्कुल सुन रही हूँ, बहुत अच्छी बात है, इसको और एक बार समझा दीजिए। ऐसे करते 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 हुए चले गए, लेकिन कब नींद लग गई सुभद्रा को पता नहीं लगा और यह अनुशासनहीनता अर्जुन की हो गई, बीच में टोका नहीं। आदि रचना का वर्णन यथावत उसने सुना दिया और यह सारे सारे संस्कार उस जो गर्भस्थ के ऊपर पड़ती चली जा रहे हैं। आप कॉलेज खोलो तो शिक्षण नहीं मिलता, विद्यालय खोलो शिक्षण नहीं मिलता, संस्कार के साथ किए जाते हैं तो मिलता है, नहीं तो वह अर्थकरी विद्या के ही उपासक बन जाता है, अन्य और कुछ नहीं होता। आज संस्कारों के बारे में भी हम सोचते हैं तो जैनियों के यहां भी संस्कार हैं तो वैष्णव में भी संस्कार है तो आर्य समाज में भी संस्कार है, तो संस्कार रहित कोई भी समाज नहीं है। गर्भ में आने से पूर्व से संस्कार प्रारंभ हो जाता है तो देह संस्कार जो अंतिम संस्कार है वहां तक भी उसके लिए संस्कार कहा है। गाड़ना नहीं कहा और जलाना नहीं कहा, ध्यान रखो जलाने में भी एक संस्कार है ताकि उसकी यात्रा पूर्ण हो जाए। ये संस्कार अपने आप में उस जीव के ऊपर पड़े हुए रहते हैं, वो कभी भी उसके जीवन में काम आ सकते हैं, उसके परिवार के जीवन में काम आ सकते हैं, अड़ोस पड़ोस के लिए काम आ सकते हैं, उस राष्ट्र के लिए काम आ सकते हैं, विश्व के लिए काम आ सकते हैं, विश्व तीन लोक में वह तहलका मचा सकते हैं। संस्कार समीचीन रूपेण कृतम, सब संस्कार समीचीन रूप से ऐसे भुट्टी पिलाए जाते हैं, जो भुट्टी पीने के योग्य तो नहीं है वो फिर भी पिलाया जा रहा है आपको। जन्म के बाद की बात करते हैं, पुराण ग्रंथ जन्म में आने से पूर्व से ही बात करना प्रारंभ करते हैं। आप जन्म लेने के उपरांत भी बच्चे से बात नहीं करते हैं क्योंकि वो इस प्रकार के विद्यालय छात्रावास में पढ़ते जहां पर माता पिताओं का समागम भी मुश्किल हो जाता है। संस्कार दूसरा विदेशी देंगे और देशी बच्चा तैयार होगा, समझ में नहीं आता हमें। राष्ट्र को संभालने वाला कौन संभालेगा, कौन संभाल सकता है, कौन संस्कार डाल रहा है? कोई भी है नहीं, कोई गुट्टी पिलाने वाला नहीं, संस्कार डालने वाला नहीं। आप सोचते हैं बड़ा होने के उपरांत अपने आके आपको समझा देगा, ये ध्यान रखना आपसे वो कुछ नहीं समझेगा क्योंकि आप शुरुआत से ही आपने एक पट्टी पढ़ाई उसको कुछ समझा ही नहीं। समझाने का अर्थ जन्म लेने के उपरांत की बात नहीं होती है कि गर्भ से ही हम अपने भावना करते हैं। हमारे संतान इस प्रकार के संस्कार के साथ पले, ये क्षत्रिय था असली अर्जुन थे और वो अर्जुन ने अपना कर्तव्य का निभाव करता है चला गया, लेकिन अनुशासन में हीनता आ गई, प्रमाद कर गया, पूछा नहीं दोबारा कि उनको द्रेय सुन रही है क्या नहीं, और वह उसकी आंख लग गई। देखो ये ध्यान रखना, तुम प्रवचन सुनते सुनते सोना नहीं, राजस्थान वालों से विशेष कहना हमारा क्योंकि यह सारे सारे राजस्थान में जाकर के भी सुनाना पड़ेगा, मैं राजस्थान से ही आया हूँ ये ध्यान रखना, आप ही नहीं मैं भी राजस्थान से आया हूँ, राजस्थान को जानता हूँ। महाराज जी ने मेरे ऊपर संस्कार राजस्थान में ही डाले, वर्षों को गिनने की बात नहीं है ध्यान रखना, और महाराज जी को भी आपने कह दिया ये ध्यान रखना इनके साथ जाकर आप बात नहीं कर सकते और इनको भी ताकीद दे देते हैं इनके बातों में नहीं आ जाना। प्रार्थना प्रार्थना किया करो, आग्रह आग्रह किया करो, सत्याग्रह भी कर सकते लेकिन सत्यग्राही बना करो ये ध्यान रखा करो। तो क्या बात कह रहा था, ये बात कह रहा था संस्कार की बात है, वह संस्कार आधे तक तो सुना दिया, आधे तक तो सुन लिया, बाद में आदि जो चक्रव्यूह की रचना का वर्णन था वह बहुत महत्वपूर्ण था। प्रवेश इतना महत्वपूर्ण नहीं कि प्रवेश पाकर के पुनः वह साबुत सुरक्षित बाहर आ जाए तो वह विजयशील हुआ करता है। वीर अभिमन्यु की इसमें कोई भी गलती नहीं थी, क्या करे क्षत्रिय पुत्र है, जितना सुना सुन रहे कि नहीं आप लोग, हाँ उसने कहां सुना सोचो विचार करो, उसने कहां सुना, पेट में सुना, किसने सुनाया, भावना ने सुनाया। ये भावना थी कि मेरी संतान कि किसी भी प्रकार से क्षत्रियता से वंचित न हो और प्रजा की रक्षा करने में तत्पर रहे, ये क्षत्रिय का एक संकल्प रहता है। यह संकल्प पूर्ण होता है उस क्षत्रिय को बहुत आत्मसंतुष्टि होती है। दुनिया में कोई संतुष्टि हो या ना हो, लेकिन कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को अपने कर्तव्यता की पूर्णता पर बहुत संतुष्टि होती है। ये तो दुनिया दुरंगी मखारे सराय कहीं खैर खोजी कहीं हाय हाय हमेशा बना रहता है। दुनिया प्रशंसा करे तो आत्मनिष्ठ है और कर्तव्यनिष्ठ है, ऐसी बात नहीं है, ध्यान रखो। क्षत्रिय लोग कभी ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, कभी किसी को कुछ कहते नहीं, लेकिन एकांत में भी वह अपने कर्तव्यनिष्ठा से स्खलित नहीं हुआ करते हैं। यह क्षत्रियता का एक प्रतीक होता है। धरती के पालक वह भूपालक माने जाते हैं और यह संस्कृति हमेशा बनी रही है। तभी यह संस्कार आज कुछ चल रहे हैं। यहाँ पर 24 भगवान जो क्षत्रिय हुए थे उन्होंने इस भर्ती के ऊपर संस्कार डाले हैं। इस आर्यकंड में ऐसे संस्कार डाले हैं उन्होंने अपने पत्नी के द्वारा विहार करते हुए और चर्या करते हुए उपदेश देते हुए एक एक कण में क्षत्रियता और जनत्व बनने के एक संस्कार उन्होंने डाले है। वे अभी समाप्त नहीं हुए, ये रहेंगे पंचम काल के अंतिम समय तक। तीर्थंकर भले ही अभी इस काल में नहीं हूं, लेकिन तीर्थंकरों ने ऐसे संस्कार डाले उनकी यदि कोई जिनवाणी को पढ़ लेते हैं, शास्त्र को हम पढ़ लेते हैं, तो वह वीरत्व अपने आप ही भीतर से बाहर आने को चला जाता है। कि यह मैं इस खून का, मैं इस शरीर का यदि प्रयोग करूं तो इस प्रकार वीतरागता पथ पर चल करके मैं करूं, ये नहीं होता है तो मैं गृहस्थ आश्रम में रह करके प्रजा का पालन करता रहूं और सभी जीव इस अनुशासन के माध्यम से सुख और शांति का अनुभव कर सके। ये हमेशा हमेशा उन लोगों के बात रहती है। अर्जुन ने अनुशासन का भंग कर दिया और उसकी पत्नी ने जो प्रमाद नहीं करना चाहिए था प्रमाद कर गए। जिस प्रकार किसान पृथ्वी में बीज बोता है तो कभी सोता नहीं, पृथ्वी में बीज बोते ही उसका सारा का सारा ध्यान उस खेती की ओर ही रहता है और वह बार बार अपनी दृष्टि निहारता रहता है और दूर दूर तक देखता रहता है कि मेड़ के ऊपर खड़े होकर के कहां पर कमी है इस खेत में और मुझे क्या करना है, अड़ोस पड़ोस खेत में क्या है लहला रहे, हमारे क्यों नहीं पानी की खाद की परिश्रम की आदि आदि सारा सोचता और भगवान से विनती करता रहता। जब वह फसल कट करके धान पूरा का पूरा घर आ जाता है उस समय वह शांति का एक श्वास दीर्घ श्वास लेता है कि मैंने अपना जितना कर्तव्य था वह कर लिया, अब प्रजा के लिए जितना बांटना बांट लूंगा। लेकिन यदि सो जाता है तो सारी प्रजा सो जाएगी क्योंकि गेहूं नहीं आए, बीज नहीं आए, फसल नहीं आए, नहीं परिवार, नहीं गांव, नहीं राष्ट्र, नहीं समाज, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। संस्कार डालते डालते अधूरा संस्कार का यह परिणाम वह प्रवेश को पा गया वीर अभिमन्यु, किंतु बाहर निकलने की विद्या उसने नहीं सुनी थी, पढ़ी नहीं थी, नहीं सुनी नहीं थी, वह वचन उसके पास नहीं। इसलिए वचन जो है शब्द ब्रह्म माना जाता है। शब्द यदि ब्रह्म होता है तो निश्चित बात है उसमें कुछ न कुछ ज्ञान की बात होती होगी, उसमें कुछ न कुछ प्रवचन होते होंगे, उसमें कुछ न कुछ हितोपदेश होता होगा। शब्द केवल शब्द नहीं हुआ करते किंतु शब्द का अर्थ हुआ करता है। जिसको पद बनाया जाता है तो शब्द को अर्थ मिलता है। राम कहने से कुछ नहीं होता, रामन कहने से अर्थ निकलता है। यह राम कर्ता के रूप में आया है इस वाक्य में। जैसे कोश में भी शब्द राम है तो वह कोश कोई साहित्य नहीं हुआ करता है। साहित्य जो बनता है उन कोश के आधार पर पद जब धारण कर लेता है तो साहित्य बन जाता है। तो पद का अर्थ होता है व्याख्याता, शब्द कोश कभी व्याख्याता नहीं होता किंतु उसमें अर्थ रहता है। उस अर्थ को पद दे करके बनाया जाता है तो परमार्थ की सिद्धि होती है। शब्दों में यदि सिद्धि होती तो किसी को भी सिद्धि होना चाहिए, लेकिन शब्दों के साथ जो भाव दिए जाते हैं वह संस्कार का काम कर जाता है और वह शब्द सुनने के लिए वह वंचित हो गया। और आप लोग सोचते हैं कि अपने यहाँ राम जैसे बने और लक्ष्मण जैसे बने, कृष्ण जैसे बने और अर्जुन जैसे बने, पांडव जैसे बने, महावीर जैसे बने, अनेक प्रकार के पंच कल्याण करते हैं, पंच कल्याण उनको जो करते हैं उस समय आप देखा करो और सोचा करो कि क्या क्या क्रियाएं संस्कार उसमें डाली जाती है। उसमें गर्भ कल्याण से पूर्व में भी कुछ संस्कार रहते हैं, गर्भ कल्याण से प्रारंभ हो जाता है और निर्वाण कल्याण तक पूरा का पूरा यह चित्रण 5 दिन में 5 व्यक्ति मिल करके ये कार्य कर जाते हैं तो पंच कल्याण हो जाता है और पंचों का कल भी कल्याण नहीं हो पाता। सारी दुनिया के तो कैसे कल्याण है, जल्दी रहती है, हमें संस्कार की कोई बात सुनता नहीं, कुछ भी नहीं करता। नामकरण संस्कार भी एक होता है। आजकल हमने यह और सोचना प्रारंभ कर दिया, यह सोचना कर दिया कि नामकरण जो माता पिताओं के द्वारा किया जाता है अथवा कोई सन्यासी साधु सन्यासी के पास भी जाकर के पूछा जाता है, ऐसी भी रिवाज हो सकती है और वह ये बाईपास की प्रथा को बहुत इतनी तेजी से चल पड़ी है। कहां कहां पर बाईपास नहीं पता, हृदय के लिए बाईपास की आवश्यकता पड़ रही है आजकल। जब ओरिजिनल पहला था उसके साथ और बाईपास करना होता है, भीतर भी एक कुछ ऐसे रास्ते हैं जिन रास्तों को चालू करना आवश्यक हो जाता तो बाईपास के माध्यम से सुनते हैं 30 वर्ष की उम्र बढ़ जाती है। लेकिन जिस बाईपास से हम बढ़ना चाहते हैं कि ओरिजिनल रोड क्यों खराब हो गया ये भी सोचना चाहिए। एक्सीडेंट ज्यादा होने लगे रियल पथ पर इसलिए बाईपास की आवश्यकता पड़ी, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं थी हमारे विचार से। हम भी इंदौर तक बाईपास से ही आ रहे थे। कई लोगों को ये अनुमान था कहीं ऐसा ना हो कि बाईपास के द्वारा ही निकल जा कहीं अमर इंदौर रह जाए, लेकिन वह ऐसा नहीं होता है। बाईपास इसलिए कि एक्सीडेंट न हो इस पेशा से रखा जाता, तो वह एक अपरिणाम से जोड़ता जा रहा है जिसका भी प्रभाव अवश्य पड़ रहा होगा ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि माता पिताओं के द्वारा जो नामकरण किया जाता है उसमें जो भावना रहती है, उसमें जो संस्कार के चिन्ह रहते हैं, वे सारे सारे वंचित हो जाएंगे। जिसके माध्यम से कुंडली का निर्माण होता है, ध्यान रखना जो नाम रखा गया है ज्योतिष विद्याओं के माध्यम से, माता पिताओं के माध्यम से, उसी के माध्यम से उसकी कुंडली अथवा उसका भविष्य आदि कुछ जानकारी निमित्त आदि मिल जाते हैं और हम अपने आप ही अपना नाम जो है निकाल दे रखने लग जाए तो वह सारे के सारे भविष्य उज्ज्वलता की ओर नहीं जाते। भविष्य सही में सही भविष्य उसके जीवन में नहीं आ पाएगा। मैं सही भविष्य को उस प्रकार नहीं मानता क्योंकि अपना पुरुषार्थ अपने संस्कार के माध्यम से भविष्य बनता चला जाता है। एकमात्र आधा प्रवचन सुनने का कारण यह हुआ स्वयं तो वह सो गई लेकिन अभिमन्यु को बीच में सुनाने का श्रेय यदि चला जाता है तो सुभद्रा को चला जाता है। और यह सुभद्रा अकेले का कार्य नहीं था कि बीज बोने का कार्य जिस प्रकार किसान का होता है उसी प्रकार गर्भस्थ ऋषि के ऊपर संस्कार डालने के लिए यदि अर्जुन तैयार है तो अर्जुन का कर्तव्य था एक एक शब्द तक पूछ पूछ करके डाल देता। वह नहीं डाला कि यदि मान लो आधा तो खेत
को बीज बो लिया, फिर लाइन से फिर उसके उपरांत वर्षा वगैरह होने के डर होने के कारण किसान जो है यूं फेंकता चला गया, और जो फेंका हुआ जो बीज है वह यूं ही चला जाता है, वो कभी ये नहीं खेत में तो पड़ गया लेकिन ऊपर जो बीज पड़ जाता है वह कभी भी अंकुरित नहीं होता, यदि अंकुरित हो भी जाता है तो उसकी जड़ें पाताल की ओर नहीं जा पाती, ध्यान रखो ऊपर ऊपर रह जाती है, फल ये निकलता है कि वह पौधा जवान नहीं बन पाता है और उसमें से कोई किसी प्रकार से सिक्के या बाल नहीं हो पाते, पूरा परिश्रम और वह बीज नष्ट हो जाता है। आपके जीवन में जो संयम के साथ जो कुछ भी आप बीज बोते हैं उसको आप आगे पीछे देखा करो, यहाँ तक कि बहुत दिन तक वर्षा नहीं होती है तो अब बीज तुम्हें जल भी जाता है भीतर ही भीतर, यह भी एक सावधानी की बात है। यदि मान लो बीज बो लिया और निकल गए, ऐसा नहीं होता, बीज राख फल भोगने वाली बात है, बीज है क्या नहीं ये देखो, ऐसा नहीं कि वह अपने बोझ तो आई जाए फसल, ऐसा नहीं, अनुपात से खाद भी चाहिए, अनुपात से पानी भी चाहिए, अनुपात से उसके ऊपर सिर के ऊपर मिट्टी भी चाहिए बीज के सिर के ऊपर, तो ये हो जाता है। बहुत गहराई तक पहुंचा दो तो भी ठीक नहीं, ऊपर फेंक दो तो भी ठीक नहीं, और बहुत ज्यादा खाद डाल दो तो भी ठीक नहीं, खाद तो डालो लेकिन मिट्टी से भी ज्यादा खाद डालोगे तो खाद ही खा जाएगा बीजों को। ये सारे सारे संस्कार वह एक विद्या है, उस विद्या के अनुरूप ही किसान करता चला जाता है, क्षत्रिय का भी यही कर्तव्य होता है। क्षत्रिय का अर्थ केवल जो है वह शास्त्र शस्त्र सिखाता यही नहीं, वो संस्कार के साथ अपने एक एक कदम चलाता है और एक 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 बात पर वह गौर करके सुनाता रहता है और सुनता रहता है, उसके अर्थ भी पूछा जाता है। इस प्रकार पहले क्षत्रियों को संस्कारित किए जाते थे और क्षत्रिय अपने संतान के ऊपर ऐसे संस्कार डालते थे, इस प्रकार के गर्भस्थ शिशु के ऊपर दोनों माता पिता मिलकर के अच्छे भावों के द्वारा संस्कार डाले जाते हैं। खान पीन में यदि अंतर आ जाता है वह संतान बाद में भी उसी से प्रभावित होता रहेगा, यदि खान सात्विक है पीना खाना रहन सहन तो सारे ही सारे संस्कार गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ते रहते हैं और वह आपके अवसान भी हो जाता है, तो भी वह क्षत्रिय आपके अवसान में आपके अभाव में भी क्षत्रियता के माध्यम से पूरी प्रजा का संरक्षण करता है, उसको किसी बात का डर नहीं रहता। सिंह का छोटा भी बच्चा हाथी से भूलता है, ये क्यों आ गया तो सामने जाना से भर जा, वह भले ही उसके ऊपर प्रहार करें या न करें किंतु उसके दहार में और उसकी दृष्टि में और उसके पंजा यूं उठा देता, हाथी घबरा जाता है क्योंकि इससे मोल नहीं लेना चाहिए, यहां से चला जाना ही ठीक है। ऐसा क्षत्रिय वंश होता है और वह अधूरा रह गया, काम कहाँ पर ठप हो गया, अभिमन्यु बाहर नहीं आ पाए। आप यदि बाहर बुलाते बाहर आने का मार्ग बताते तो वह आ जाता, कब रोन से नहीं किंतु आपके संस्कारों की कमी के कारण वह बाहर नहीं आ पाया और उसके कारण उस संधि का लाभ कौरव ने ले लिया। कहने को यह हो गया यद्यपि उनके मन में बिल्कुल खराबी आई थी, वो बेईमानता कर लिया है क्योंकि युद्ध के कानून के अनुशासन के भंग करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। पहले रात में नहीं युद्ध होता और अनुशासन भंग करके युद्ध नहीं किया जाता, छल कपट के माध्यम से युद्ध नहीं होता, आज का युद्ध छल कपट पर ही आधारित, कोई सामने सामने से लड़ने की हिम्मत कहां है, इनमें बाहु है लेकिन बाहु में शक्ति नहीं, माइंड तो है लेकिन उसमें गौरव नहीं संकल्प नहीं, छिप करके युद्ध करने का अर्थ एक प्रकार से युद्ध नहीं है, वहां विनाश बोलते हैं। युद्ध में सामने सामने आज सुबह से लेकर शाम तक युद्ध हुआ, विराम हो गया, शाम को छावनी में जाकर के आपस में बोलती करते हैं, आपने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया। रात में कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता, फिर सुबह पुनः लड़ाई चली, ऐसे युद्ध होते थे। लेकिन आज आज इसका परिणाम क्या निकल रहा है, संस्कारहीन धरती होती चली जा रही है। यह बाद में ज्ञात हो गया, यह पुराण ग्रंथों में लिखा हुआ मिलता है, यह शास्त्र सुनने का कितना परिणाम निकलता है इससे महत्व सामने आ जाता है। एक सूत्र मिला है अपने को, आज तक मैं यह नहीं जानता था कि यह भी इसका अर्थ ऐसा है, क्योंकि वह सूत्र जैसे उच्चैर नीचे स्थित तो अर्थ आता ही था। बार बार हम कहते थे गोत्र कर्म दो प्रकार का होता, उच्च और नीच। लेकिन एक गाथा और मिली है, उसमें छह प्रकार के गोत्र शब्द होते हैं। ये ज्ञात इसी से हमें ज्ञात होता है कि उच्च उच्च गोत्र अलग होता है, उच्च गोत्र अलग होता है, उच्च नीच अलग होता है, और नीच उच्च अलग होता है, नीच अलग होता है, और नीच नीच अलग होता है। ये सारे के सारे संस्कार उनके परिणाम हमारे सामने आते हैं। अच्छे खानदान में कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है लेकिन उसके आचरण बिगड़ जाते हैं तो आचार्य कहते हैं कि उच्च से नीच की ओर जा रहा है। और यदि उच्च गोत्र के सहवास में आ जाता है जिसको आर्य बोलते हैं तो वह नीच से भी उच्च होता है, यह बता रहा है। यदि हम अपने संस्कार भी अच्छे रखें और उसके साथ साथ आचरण भी वर्तमान में बिगाड़ देते हैं तो संस्कार हमारे किसी काम के नहीं आएंगे। जैसे मान लो दूध तो जमा लिया आपने, इस दूध तो बिल्कुल प्योर है लेकिन उसमें प्रमाद के कारण एक नमक की डली गिर गई तो क्या हो गया? आपने पूरा का पूरा साफ सुथरा बर्तन लाए, उसमें दूध तपाया, उसमें जामुन डाल दिया, सब कुछ पैक कर दिया, एक धूल का कण भी उसमें नहीं गया, लेकिन एक गलती से थोड़ी सी नमक की डली उसमें डल गई। और आप सुबह उठ करके सब कई व्यक्तियों को निमंत्रण दिया है, अपने यहाँ श्रीखंड बनने वाले, पहले तो खटखट गया है श्रीखंड कहां से बनेगा, बस सारा का सारा फट गया और श्रीखंड खंड 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 हो गया। अब यह है ये घंटे में तो जमा नहीं सकोगे आप, जमाने की बातें तो कर सकते हैं लेकिन एक घंटे में श्रीखंड बनाने योग्य दूध को आप नहीं तैयार कर सकते, वह स्वाद नहीं आ सकता, हजार नहीं लाख रुपए खर्च करके नहीं हो सकता। और जिस समय भोजन परोसना था उस समय गड़बड़ हो गया, ये क्या कर दिया आपने, हमने कुछ भी नहीं किया, तो ऐसा क्यों हो गया तो आपको ही देखना है। तो गलती से जो नमक के डली डल गए उसमें फट गया पूरा संस्कार ही हो गया। यदि हमारा आचरण आज बिगड़ जाता है तो पूरा का पूरा वह जो परिश्रम है और परिसर है पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाता है, उसमें किसी प्रकार के संस्कार नहीं रह पाते। और जो नीर होते हैं यदि उच्चता की ओर आ जाता है तो उसके संस्कार बलवती हो जाते हैं, वह खट्टाबी हो तो भी उसके साथ कुछ मिश्रित कर देते हैं तो वह भी आपके लिए खाने में योग्य हो जाता है। और एक समय वह आ जाता संस्कार डालते जाते चले जाएं उसमें इस प्रकार की योग्यता रहती है जो नीच से उच्च बन जाता। आचरण के बारे में हम लोगों को बार बार सोचना चाहिए, संस्कार डालने के बारे में हमारे बार बार सोचना चाहिए। महापुराण का उत्तरार्ध जो द्वितीय खंड माना जाता उसमें बहुत सारे संस्कारों की तालिका आपके लिए मिल सकती है। है, उस प्रकार के संस्कार आप अपने जीवन में डालने का प्रयास कर लीजिए, भविष्य के लिए भी आज के संस्कार आपके लिए काम में आ सकते हैं, और अगले जीवन भविष्य जो संतान का है उसके लिए भी आप पहले शुरुआत से ही प्रारंभ कर दीजिए कि पैसे से नहीं किंतु संस्कारों से स्वयं और परका भी हम कल्याण कर सकते हैं। पैसा तो सबके पास आता और चला जाता है, संस्कार जो है प्रत्येक के पास नहीं आ सकता, और इस संस्कार के कारण तो हम बहुत देश राष्ट्र विश्व को भी प्रभावित कर सकते हैं। सात्विकता के कारण ही इस प्रकार का आ सकता है। इसलिए इस कथा के माध्यम से हमने अपने जीवन में क्या सोचा क्या समझा ये सोच लेना चाहिए। आप लोगों का इतना 50 से 55 मिनट का यह कालखंड निकल चुका, आप लोग दूर दूर से आए हैं, आप अपने संतान के ऊपर अच्छे संस्कार डालने का प्रयास कर लीजिए। आज ही हमने एक व्यक्ति के मुख से सुना, एक छोटा सा लेख आया है और उसमें ये आया है कि देखो कि क्या क्या दुनिया में हो रही है बातें, कि कम से कम भी 350-400 रुपए में 1 किलो या पाउंड 1 किलो मांस भारत से बाहर चला जाता। इसको सुनकर के मुझे ऐसा लगा कि कहां भर महाभारत की कुरान की बात और कहां रामायण और कहां पुराण ग्रंथ, कहां समय सार प्रवचन सार और कहां रत्नग्रंथ शंकराचार्य और कहां सम्यक दर्शन और कहां सम्यक दर्शन की 4 अंगों में अनुकंपा, और आप लोग पढ़ते चले जा रहे हैं और दाम मिल रहा है, इसलिए इस खोज में है कि मैं ये व्यवसाय की बात है, हमें समझ में बात नहीं आती है। व्यवसाय सात्विक होना चाहिए लेकिन सात्विकता के संस्कार ही नहीं, पैसे 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 करते चले जाते हैं लेकिन क्या उद्देश्य रहता है, क्या लक्ष्य रहता है कोई पता नहीं। घर चलाना, देश को चलाना, राष्ट्र को चलाना पैसे के माध्यम से चलता है, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पैसे कहां से पैसा ला, कि जिस वृक्ष को जो जिस वृक्ष से आप फल लेना चाहते हैं, फल के लिए खाद की और पानी की इत्यादि की आवश्यकता में ठीक है, लेकिन कोई कह दे कि इस पेड़ को खून का सिंचन कर दो तो आप करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हमें फल लेना है और फल खाना है, तो जो फल खून से यदि पनपता है तो उसको हम नहीं खाना चाहेंगे। पानी देंगे, खाद देंगे, उसके रखवाल करेंगे और परिश्रम करेंगे और सब कुछ करेंगे, किंतु हम खून डाल करके नहीं। तो आप इसी बात को यह देख लीजिए ना कि पैसे के कारण इस प्रकार कर रहे हैं, और वह गर्भस्थ शिशुओं के मांस की कीमत 4 गुनी होती है। ऐसे कहा तो वह गाय को जीवित अवस्था में उसके पेट को फाड़ करके उसमें से बछड़ों को निकाल करके और जल्दी जल्दी उन बछड़ों के ऊपर से छाल खाल को निकाल करके उसको खाल को तैयार करके उसको बेचना, और उस मुलायम जो मांस को वहां पर बेचना 800 रुपए किलो हो तो भी यह बहुत दयनीय दशा है। ये तो अन्न का कीड़ा तो है, लेकिन अन्न ज्यादा खा लेता है तो 10 साल के होने में 5 साल में भी वो मर सकता है, और इस यदि परिणामों के साथ मर जाता है तो उसको नरकाई के अलावा कोई बंद नहीं हो सकता। बहुत आरंभ और बहुत परिक्रम इसी को बोलते हैं, बहुत मूर्छा इसी को बोलते हैं। उन शिशुओं को गर्भवश बाहर जन्म तक नहीं हुआ अभी, और उसको निकाल करके सीधा कत्ल करना, उसको समाप्त कर देना, यह भारत में नित नहीं घटना हो रही है, गलत नहीं है कि राजस्थान बॉर्डर से गुजरात की ओर ऐसी लाइन लगी बताते हैं, सुनते हैं कि कितने ट्रक जाते हैं प्रतिदिन, कौन भी पता नहीं लगता, लेकिन आपके लिए नेशनल हाईवे से गुजरते हैं। जिस सड़क में आप लोगों ने मेहनत करके पैसे लगाए उसी के ऊपर से वह दौड़ते रहते हैं गाड़ी, और आपको मालूम नहीं, कोई भी पूछने वाला नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं? आज ही सुनने में आते तो कुछ कहना भी ऐसे शर्म जी से लगने लगे मुझे, क्योंकि वह सारे सारे सुन तो रहे हैं, लेकिन ऐसे ही है कि जैसे सुभद्रा की कथा जैसे सुनना जैसा हो रहा है। उसने आधी तो छोड़ दी थी, लेकिन आपने पूरी ही शुरू करके एक कान से एक कान निकाल देते हैं तो यह अभिमन्यु आपके घर में नहीं आने वाला, ये निश्चित बात है। उसको कोई पूछने वाला न कोई भी नहीं आने वाला। ये क्यों हो रहा, ऐसे कोई प्रश्न भी नहीं पूछा जा सकता आज। ये तो चलता है, चल ही रहा है, लेकिन कहां तक चलेगा, इसका भविष्य क्या होगा, इसके बारे में सुनते हैं तो माथा ठनकता है, ठनके बिना रह नहीं सकता। कोई भी राष्ट्र इस प्रकार कार्य नहीं कर रहा, लेकिन भारत से ये कार्य किया जा रहा। अभी एक लोग आया था, उसमें ये लिखा गया था कि किसी भी प्रकार से करो, किंतु जो 21वीं शताब्दी प्रारंभ होने वाली है उस एक तारीख के दिन किसी भी प्रकार से मांस की कमी रहने नहीं देंगे, ऐसा अमेरिका से लेख निकल करके आया, और उसमें गोमांस रखा है। किसी को भी हम खाली हाथ लौटाने नहीं देंगे, यह निश्चित रूप से मांग बढ़ती जा रही है और उसकी पूर्ति के लिए हम अभी से लग गए हैं, ऐसा उनका कहना, अभी से हम स्टोर करना प्रारंभ कर रहे हैं। अब ये आप सुन लो, यहाँ पर मांस निर्यात निरोध के बारे में आप आंदोलन कर रहे हैं, और वो कहाँ से जाएगा, जाएगा तो यहीं से, कैसे जा सकता है, लेकिन अर्थ के लोग में सब कुछ जा सकता है और सब कुछ हो सकता है। चंडी जाए पर दमड़ी न जाए, यह कहावत आज चरितार्थ हो रही है, क्योंकि आत्मनिर्भर सर्वमपि त्याज्य, आत्म के लिए सर्व कुछ छोड़ देना चाहिए, आत्म धर्म के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता। पैसे के पीछे लगोगे तो आत्मधर्म तो समाप्त हो गया, जहाँ पर आत्मधर्म समाप्त होगा अहिंसा धर्म समाप्त होगा, भविष्य कुछ नहीं रहेगा, केवल जरूर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो आगे आप लोगों को सीटें मिलेंगी तो वहाँ पर सीटें इसी बैलेंस पर मिलने वाली है। आपने धर्म कर्म क्या किया बताओ, हमने तो हमारे बाप दादाओं ने तो बहुत किया, आपने क्या बलैक बताओ आपने क्या किया, ऐसी कैसी बात, उस खानदान में तो हमारे जन्म है और खानदान तो उसी में टिकट तो मिलना ही चाहिए, संभव नहीं, ये खानदानी टिकट नहीं होते, किंतु यहाँ पर ऐसे खान होना चाहिए जिसमें धर्म होता है, वहाँ पर टिकट मिलता है। स्वर्ग की ओर आप देखते हैं मिल जाना, ऐसा नहीं मिलने वाला, मुक्ति तो बहुत दूर है, वह सात राज्यों और पार करना पड़ता है। स्वर्ग के लिए कभी सीढ़ी लगाना चाहो तो ऐसी सीढ़ी नहीं लग सकती, एक चींटी भी नहीं पहुंच सकते वहां पर, सुनते ही मेरु पर्वत के उपरांत एक बाल का अंतर है जहां से प्रथम स्वर्ग चालू हो जाता है, लेकिन मेरु पर्वत तक जाए तो वहां पर जो ऊपर चढ़ जाए नहीं चढ़ सकते, वहां यहीं से टिकट मिलेगा तो चढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं। धर्म कर्म के ऊपर आधारित है, संस्कारों के ऊपर आधारित है हमारा भविष्य, नहीं है तो वह सारा सारा भविष्य निकलने वाला है, निकल चुका है जिसका, उसके लिए कम से कम एक आध घंटे भी संस्कार डालेंगे तो अवश्य संस्कार पढ़ सकता है, अगले जीवन की भूमिका का निर्वाह किया जा सकता है। तो वह बात सुन करके मुझे बार बार लग जाती है कि माता पिताओं की अनुशासनहीनता का फल बच्चों और संतानों को भी मिल जाता है, और संतान यदि इस प्रकार के कार्य करने लग जाए तो आगे उसके लिए क्या भयानक स्थिति आने वाली है आप ही देख सकते हैं। अब 21वीं शताब्दी की प्रतीक्षा में अब है तो निश्चित बात है दो महीने के उपरांत वो आने वाला है, अक्टूबर तो आधा हो ही गया है, और नवंबर और दिसंबर दो महीने रह गए, ये 15 दिन और रह गए, तो बस कुल मिलाकर के 2.5 महीने हैं। 2.5 महीने के उपरांत 21वीं शताब्दी आपके सामने है। ये तो आती चली जाएंगे कि सूरज चांद छिपे निकले, रित फिर करके आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं। 2.5 महीने में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने संस्कार को मजबूत बना सकते हैं। भविष्य की चिंता ना करो, आगे की चिंता ना करो। वर्तमान में यदि हमारा पुरुषार्थ अहिंसा मूलक नहीं होता तो उसका कोई फल नहीं निकलने वाला है। अहिंसा परमो धर्म।
वंदना के स्वर जब अंतर से उभरते हैं तो वे पारिजात के पुष्पों का रूप धारण करते हैं। स्तुति की सुरभि से सुरभित इन पुष्पों में गुरुवर विद्यासागर का ही रूप दिखाई देता है। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, सारे जहां में हम तस्वीर लिए फिरते हैं। जैसे सूरज की किरणें कमल की पांखुरी को मुखरित कर देती है, वैसे ही गुरु की वाणी शिष्य के भीतर सोए हुए परमात्मा को जगा देती है। बिंदु से बिंदु और क्षुद्र से विराट तक की अंतर यात्रा में गुरु पथ के प्रदीप की तरह पथ प्रदर्शित करते हैं। तभी तो ऐसा लगता है कि हर सागर महासागर नहीं होता, हर सागर महासागर नहीं होता, हर कलश गागर नहीं होता। होते हैं हजारों संत इस दुनिया में, हर संत विद्यासागर नहीं होता।
भव्य जीवन को तीर्थंकरों के पंच कल्याण मनाने व समोसरण की दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। काल चक्र के प्रभाव से वर्तमान समय में हिंसा, अराजकता, अन्याय, भ्रष्टाचार जैसा दूषित वातावरण अंधकार रूप में व्याप्त है, किंतु हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुवर रूप में ऐसे तेज सूर्य प्रकाश पुंज का सानिध्य प्राप्त है। ऐसे गुरु दर्शन मात्र से मन का करोश मिट जाए, इसी गुरुवाणी जैसे दिव्य ध्वनि, ऐसे गुरु परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के परम शिष्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में सत सत वंदन। आचार्य श्री जी के प्रवचनों का संग्रह प्रस्तुत है। आचार्य श्री जी के प्रवचनों की सीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें ब्रह्मचारी जी श्री अजित वीर, श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम इंदौर, दूरभाष 545744।
पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, कुंतियों का अब तो हमें अंत चाहिए। घना अज्ञानता का छाड़ना है गर्व, आज विद्यासागर जैसा संत चाहिए।